अपना काम तो पूरे जगत से पार तत्व जो है उस तत्व को मैं रूप में जानकर उसमें आराम पाना ही अपना पुरुषार्थ है। तो साधन से रिद्धि सिद्धि मिलती है, लेकिन सतगुरु अगर सुरमा नहीं है, शब्द की चोट करके साधनों के साथ की, शरीर के साथ की अहम प्रत्यय बुद्धि, तादात्म्य बुद्धि अगर नहीं तोड़वाएंगे तो साधक भटक जाएगा। इष्ट मंत्र गुरु को त्याग कर जो इधर उधर भटकते हैं, समझ लो उनके चित्त में श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धाहीन व्यक्ति कहीं भी सफल नहीं हो सकता। आत्मज्ञानी महापुरुष जैसा विश्व में और हमारा कोई हितेशी था नहीं, है नहीं, होना चाहे तो हो नहीं सकता।
ओम ओम ओम। वितराग भय क्रोध मन माया माम उपाश्रिता, हमारा राग भय क्रोध व्यतीत हो जाए, भय राग क्रोध व्यतीत होने पर भी पूर्णता नहीं। मन माया माम उपाश्रिता, भय राग क्रोध व्यतीत हो गए लेकिन परिच्छिन्नता दूर नहीं होगी। मैं निर्भय हूँ एक अंतःकरण उपहित में हो जाएगा कि मैं निर्भय हूँ, मुझे क्रोध नहीं है। तो भय राग क्रोध से अंतःकरण मलिन हो जाता है और जीव बेचारा जन्म मरण का भागी होता है। भय राग क्रोध मिटने पर फिर भी जीव को साधनों में मैं बुद्धि मौजूद रहती है। हकीकत में भय राग क्रोध आदि होते हैं मन बुद्धि में, मन बुद्धि साधन है। तो हम साधनों की शुद्धि साध्य को देखने के लिए करें वो तो ठीक है, लेकिन साधनों को मैं मानते रहे तो साध्य ठीक से नहीं दिख पाएंगे। ईश्वर हमेशा सिद्ध तत्व है, सिद्ध वस्तु है। ईश्वर अगर इंद्रियों का विषय होता, साधनों के द्वारा दिखने का विषय होता तो गाय भैंस कौवे घोड़े गधे को ईश्वर दिख जाता। ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है, ईश्वर तो ये सब इंद्रियों को नेति नेति करने के बाद जो स्वतः सिद्ध तत्व है वो ईश्वर है। तो उस ईश्वर में मनमया होना चाहिए। सत्कर्म करने के लिए धन आदि का उपयोग, ईश्वर प्राप्ति के लिए साधनों का अवलंबन, और सत्कर्म करने के लिए बुद्धि का अवलंबन लेने वाले व्यक्ति से भी जो माम उपाश्रिता है, ईश्वर के माम के नजीक बैठता है, वो जल्दी पहुंचता है। ध्यान से सुने, यहां तक कि संग्रह और भोग का त्याग करने का साधन भी उतना तीव्र नहीं पहुंचाता, जल्दी नहीं पहुंचाता जितना माम उपाश्रिता होने से होता है। ईश्वर का माम उपाश्रिता, उपमाना समीप, ईश्वर के उपवास जैसे उपमाना नजीक वास करना, ऐसे ही उपाश्रिता। संसार में हम लोग किसी न किसी का आश्रय लिए बिना नहीं रहते। किसी में हमारी प्रीति होती है और किसी में किसी का हम आश्रय लेते हैं। धन में, कुटुंब में, परिवार में, मकान में, गाड़ी में, गहनों में, कपड़ों में हमारी प्रीति होती है, और जो बलवान है उनका हम आश्रय लेते हैं। तो पदार्थों में प्रीति होती है और बलवान उन पदार्थों की रक्षा करने में जो समर्थ है उनका हम आश्रय लेते हैं। तो पदार्थों की प्रीति, नश्वर पदार्थों की प्रीति हमें दुख देती है और आधीन रखती है, और बाह्य आश्रय भी हमें भय से बनाए रखता है, उनका भय बना रहता है। सेठ का आश्रय, साहूकार का आश्रय, किसी न किसी का, नेता का, किसी न किसी का आश्रय लेंगे बाहर। तो ये जीव हमेशा कोई न कोई आश्रय भीतर थामा हुआ है, कहीं न कहीं इसकी प्रीति है और कहीं न कहीं इसका आश्रय है। प्रीति और आश्रय जब तक बाहर बना रहेगा तब तक भय, क्रोध और राग जाएगा नहीं। प्रीति और आश्रय जब तक बाहर रहेगा तब तक भय, क्रोध और राग जाएगा नहीं। क्योंकि जो वस्तु हम चाहते हैं उसमें अगर विघ्न डालता है कोई तो उसके प्रति क्रोध होगा, अगर हमारी बराबरी का है तो, और हमारे से बड़ा होगा तो उससे भय होगा कि अब इसने विघ्न डाला, ये बड़े पहुंचे वाह, उसके उससे भय होगा। तो भय कभी कभी तो कल्पना करके, भूतकाल का चिंतन करके द्वेष होता है, दुख होता है। भूतकाल में सुख भोगा है उसकी याद में भी दुख होता है, और दुख भोगा है उसको याद करके भी दुख होता है, और भविष्य काल का कल्पना करके भी भय पैदा होता है, और वर्तमान में हमारी वृत्ति में मोह होता है। हम जब तक माम उपाश्रित नहीं होंगे, ईश्वर के उपासक ठीक से नहीं होंगे, ईश्वर के तत्व को समझेंगे तो ईश्वर के उपासक होंगे। तो ईश्वर का माम, ईश्वर का माम खोजो तो तुम्हारा माम मिल जाएगा, और तुम्हारा माम खोजा तो ईश्वर का माम मिल जाएगा। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया बश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाही। जैसे तोता बांसुरी को, बांसुरी पर बैठता है तो उसके वजन से बांसुरी घूम जाती है, और तोता चोंच से पकड़ता है कि मेरे को किसने पकड़ा है, अथवा तो मरकट अपनी ही मुट्ठी बांधकर पकड़ा जाता है। ऐसे ही हमारी वृत्तियों से ही हम इस नश्वर भोग में, नश्वर पदार्थों में, नश्वर आश्रयों में बांधे हुए हैं, वरना बांधने की संसार में ताकत नहीं है। यह बंधन हमारा स्वनिर्मित है। ये स्वनिर्मित बंधन को जब तक हम स्वयं नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक महाराज परम पद का अनुभव नहीं होगा। तो जो लोग अज्ञान के तिमिर में गोते खा रहे हैं, एक तो अज्ञानी है और दूसरे शंकाशील है। भागवत में आया है कि कौवा कदम कदम पे शंका रखता है। कोई जिस जो दाना चुगाता है, प्रतिदिन रोटी का टुकड़ा डालता है, उस पर भी कौवा की शंका रहती है। ऐसे जो अज्ञानी हैं और अहंकारी हैं वो अपने परम हितेशी संतों पर भी शंका करते हैं। जयराम जी की, जो हमें ज्ञान का चुगना चुगाते हैं उनके प्रति भी शंका हो जाती है। धर्म पे शंका, इष्ट पे शंका, शास्त्र में शंका। अरे भाई, श्रद्धा बिना तो तुम माँ को भी माँ नहीं कह सकते और बाप को बाप नहीं कह सकते, क्योंकि माँ और बाप को तुमने देखा नहीं। श्रद्धा तो एक ड्राइवर पर भी रखनी पड़ती है। 80 आदमी मां, धन, माल, जान सब एक ड्राइवर के सुदर्शन चक्र पर, स्टेयरिंग पर भरोसा रखकर आते हैं। एक हवाई जहाज अमेरिका जाता है महाराज, 10-12 हजार की टिकट पहले लेकर, एक पायलट पर जान माल जोखिम सब उस पर श्रद्धा के बल पर रखते हैं, और तब हम अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से यहाँ आते हैं। हालांकि कई हवाई जहाज गिर पड़ते हैं और कई पायलट नशेबाज हो जाते हैं, कई कुछ हो जाते हैं ड्राइवर, फिर भी गाड़ी चल रही है। आप श्रद्धा चाय बनाने वाले पर भी रखते हैं कि गाय या भैंस का ही दूध होगा, घेटे या बकरे का या गधे का दूध नहीं होगा, अथवा तो जूठा नहीं होगा, शुद्ध होगा। आप इंजेक्शन लगाने वाले पर भी श्रद्धा रखते हैं कि डिस्टिल वाटर नहीं होगा, हालांकि डिस्टिल वाटर के इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर लोग, कई ऐसे मूर्ख डॉक्टर हैं जो प्रजा का शोषण कर लेते हैं, फिर भी और लोग इंजेक्शन लगवाते रहते। आप दाढ़ी उतराने वाले हजाम के पास सलून में जाकर भी उस पर श्रद्धा रखते, अपनी गर्दन दे देते, वो जरा यूं करता तो आप और नजीक दे देते। यूं करते करते इधर भी तो घुमा सकता है, लेकिन फिर भी श्रद्धा से आप दाढ़ी उतरवाते हैं। तो एक ये छोटे मोटे बिखरे बाल, ये भी आप श्रद्धा से, नाई का तो देखो अस्त्रा कैसा तेज है, उसको आप गर्दन दे देते हैं तो जन्म जन्म की जो दाढ़ी बड़ी है उसको हटाने के लिए ब्रह्मवेता के आगे अगर गर्दन रख दी तो क्या बात है।
श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियाः। श्रद्धा के साथ तत्परता हो, हमारी इष्ट में या ब्रह्मवेता के वचनों में कितनी श्रद्धा है उसका अगर अंदाजा लगाना चाहे तो उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए उपदेश पर, उनके बताए हुए युक्तियों पर हम तत्पर कितने रहते हैं। हमारी अगर उनके बताई हुई निष्ठा और बताई हुई टेक्निक, बताई हुई ज्ञान कला पर तत्परता है तो हमारी श्रद्धा है, नहीं तो हमारी तत्परता नहीं। गुरुजी आपको तो मैं बहुत मानता हूं लेकिन आपकी बात मैं नहीं स्वीकार करूंगा। गांधी को तो मैं बहुत मानता हूं लेकिन गांधीवाद से मुझे नफरत है, तो गांधी को क्या मानूं। तो ऐसे ही श्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा, शास्त्र वचन पर श्रद्धा, आदमी को श्रद्धा का धागा पतला है लेकिन भव पार करा देता है। जो बोलते हैं कि हम श्रद्धा व्रद्धा नहीं रखते तो समझ लो या तो मूर्ख है या तो अभिमानी है। वो अपना इस पृथ्वी पर या अतल वितल में 14 लोकों में अपना कोई हितेशी नहीं समझता, या तो अपने से कोई श्रेष्ठ ज्ञानी नहीं समझता है, इसलिए उसकी श्रद्धा नहीं होती। तो जो अभिमानी होते हैं वो अपने से श्रेष्ठ दूसरे को नहीं मानते हैं। जो महामूर्ख होते हैं, पशु तुल्य होते हैं, उनकी श्रद्धा नहीं होती, पशुओं में श्रद्धा नहीं होती। तो जिनका रजोतमो गुण बढ़ गया और पाशवी वृत्तियों से आक्रांत है वो श्रद्धाहीन व्यक्ति कदम कदम पर भयभीत होते हैं, कदम कदम पर महाराज उनको उद्वेग होता है, कदम कदम पर उनको द्वेष होता है, राग होता है, इसलिए उनका चित्त खंड खंड हो जाता है। तो सुविधाएं होती है लेकिन सुख नहीं होता है। सुविधाओं और सुख का संबंध इतना नहीं है, शांति और सुख का संबंध है। चित्त में अगर सुविधाओं की लालसा है तो सुविधा से सुख की भ्रांति होगी, हाश हाश, लेकिन फिर हाश कहीं की कहीं घूमेगी। लेकिन चित्त में अगर श्रद्धा है, साधन और ज्ञान के बताए मार्ग पर तत्परता है तो आपको अनुकूलता मिलेगी तब भी उसका उपयोग कर लोगे, और प्रतिकूलता मिलेगी तभी भी आप समझ लोगे कि आगमो अपाई अनित्याश्च। ये आगम है, अपाई है, अनित्य है, आने जाने वाले सुख दुख है। मैंने दोपहर के सत्संग में अर्ज किया था कि सुख आया या दुख आया 2 घंटे के बाद उसका प्रभाव उतना नहीं रहता जो पहली बार प्रभाव होता है, 2 दिन के बाद उसका प्रभाव एकदम शिथिल हो जाता है, 2 महीने के बाद अत्यंत शिथिल हो जाता है, 2 वर्ष के बाद तो महाराज वो दुख का प्रभाव याद भी नहीं रहता, और 10-20 साल के बाद उसको याद दिलाने वाले लोग भी मुलाकात में नहीं मिलते, वो भी कहीं के कहीं हो जाते। तो जो बहने वाली सरिता में फूल भी बहे तिनखे भी बहे वो उस समय बड़ा प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन आपकी ज्ञान में तत्परता है, मनमया हो, आप अपने स्वरूप के तरफ हो तो इन साधनों को दिखने वाले सुख दुख आपके लिए एक मनोरंजन हो जाएगा, स्वनिर्मित खिलवाड़ हो जाएगा, नहीं तो आपके लिए प्रारब्ध निर्मित, ईश्वर निर्मित, समाज निर्मित कैद बन जाएगी। वही की वही घटना अगर आपके पास ज्ञान है तो आपका स्वनिर्मित विनोद हो जाएगा। विनोद मात्र व्यवहार जेनो ब्रह्मनिष्ठ प्रमाण, विनोद मात्र जिसका व्यवहार होता है वही ब्रह्मवेता है। तो बड़ी बड़ी प्रवृत्ति जिन महापुरुषों ने की और बड़े सुधार जिन बुद्ध पुरुषों ने किए, फिर भी उनके चित्त में देखो तो कभी कर्तृत्व नहीं। बड़े बड़े दुख जिन्होंने सहे और फिर भी मुस्कुराते रहे, प्रसन्न रहे, तो उनके चित्त में दुख की रेखा या सुख की रेखा नहीं पड़ी। हकीकत में इंद्रियों पर, शरीर पर या व्यवहार में जो दुख आता है या सुख आता है उसका तब तक प्रभाव नहीं पड़ता जब तक बुद्धि पूर्वक हम उससे सहमत नहीं होते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब तक हम अपने हस्ताक्षर नहीं करते तब तक दुख सुख का प्रभाव, भय क्रोध और राग का प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता है। तो बंधन स्वनिर्मित बंधन है, इसलिए कृपा करके स्वनिर्मित बंधन स्व को ही दूर करना पड़ेगा। कोई आकाश से देव आकर आपका बंधन दूर करेगा ऐसी मान्यता में मत रहना। कोई संतोषी आकर तुम्हारा दुख दूर कर देगी इस चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारे हस्ताक्षर है, संतोषी को महत्व दे दो तो संतोषी दुख दूर कर देगी, और जीसस को महत्व दे दो तो जीसस दुख दूर कर देंगे। लेकिन महत्व तो तुम दोगे, और महत्व तुम दोगे और वो आए और फिर तुमको कहे और तुम मानो, इससे पहले कृष्ण की बात मान लो, कोई संत की बात मान लो, उनको क्यों परेशान कर रहे? जयराम जी। तो बुद्धि हमारी शंकाशील रहती है, तो जो कदम कदम पर शंका करता है, एक तो करेला हो, करेला कड़वा होता है, और दूसरा नीम चढ़ा करेला हो, लीमड़े चढ़े हो, एक करेला नो वेलो पाछो लीमड़े चढ़ेलो हो, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा करेला, एक तो अज्ञानी और दूसरा शंकाशील, एक तो अज्ञानी और दूसरा अहंकार वाला। श्री राम। सर धुनि धुनि पछतावहि, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावहि। क्या करे, जमाना ऐसा है, आजकल गुरु नहीं मिलते, आजकल धर्म के नाम पे क्या मंदिर ये वो सब दुकानदारी, क्या कहीं शांति नहीं, कहीं सुख नहीं, कहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन जिसकी तत्परता है वो बुद्ध पुरुषों को खोज लेता है, ज्ञानियों को खोज लेता है, गुरुओं को खोज लेता है, अपना मार्गदर्शन खोज लेता है, और अपनी बेवकूफी मिटाते मिटाते अपने घर में पहुंच जाता है। बेवकूफी मिटाने का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। जय जय। कि बाबा जी मैं MA पढ़ा हूं, बेवकूफी मैंने मिटा दी। तुमको राजी करना तो हम कहेंगे बा ठीक हो साहेब हो, लेकिन बेवकूफी नहीं मिटी। मैं IAS हो गया हूं, बेवकूफी मिट गई, मिटा दिया मैंने। नहीं, शास्त्र किसको बेवकूफी बोलते हैं कि इंद्रियों को, मन को, शरीर को, इन साधनों को मैं मानकर जो हम जीते हैं तो बेवकूफी है। इन साधनों को साधन मानकर अपनी मैं को जब जानते हैं तब बेवकूफी मिटती है। अपनी मैं को जाना तो आप किसी भी पदार्थ से, किसी भी स्वर्गीय सुख से, किसी भी ब्रह्मलोक के सुख से भी आप प्रभावित नहीं होंगे। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में, खुद पे मस्ताना हो गया। रबिया और हसन मित्र संत थे, कोई उत्सव में कोई जा गए थे, वहां लोग नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हसन के मन में आया कि कुछ कर दिखाएं। हसन ने चदरिया पानी पर बिछा दी और रबिया को कहा बहन चलो अपन वहां बैठकर नमाज पढ़ ले। रबिया समझ गए कि प्रदर्शन करने निकले, साधन से पाई हुई चीज में अहम प्रत्यय करके अब दूसरों को प्रभावित करना चाहते, तो अभी द्वैत बना हुआ है। चादर बिछा दी पानी पर और उस पर खड़े होकर सिजदा कर ले। रबिया ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहा। रबिया ने क्या करा कि अपनी चदरिया हवा में ठहरा कर कहा कि अब इधर तो लोग देख लेंगे, अपन ऊपर ही जाकर सिजदा करते। हसन को अपनी भूल समझ में आ गई और बोला कि आप तो मेरे से बहुत आगे हैं। बोले भैया जो मछली कर सकती है वो ने तू कर दिखाया, और जो एक चिड़िया ठहर सकती है कर सकती वो मैंने कर दिखाया। ये कोई सार बात नहीं है, सार बात तो ये है कि अपने स्व में टिको और संसार को स्वप्न मानकर अपने राम में आराम करना ही तो सार बात है। हवा में चदरिया टिका देना अथवा पानी पे चल लेना, ए तो मछली कौओं का काम है, अपना काम तो पूरे जगत से पार तत्व जो है उस तत्व को मैं रूप में जानकर उसमें आराम पाना ही अपना पुरुषार्थ है। ये तो मछली और कौआ कर सकते, उतना ही किया तो मानवता का फल क्या हुआ। तो साधन से रिद्धि सिद्धि मिलती है, लेकिन सतगुरु अगर सुरमा नहीं है, शब्द की चोट करके साधनों के साथ की, शरीर के साथ की अहम प्रत्यय बुद्धि, तादात्म्य बुद्धि अगर नहीं तोड़वाएंगे तो साधक भटक जाएगा। मैं भूत शुद्धि का मंत्र लेने गया, मैं प्रेत शुद्धि का मंत्र लेने गया, क्योंकि मेरे जीवन में शोक है, मैं अशोक होना चाहता हूं, नाम तो अशोक रखा लेकिन शोक भरा है। श्री राम। भूत सिद्धि का, प्रेत सिद्धि का, पूछड़ा सिद्धि का, अरे तू क्यों सिद्ध बनना चाहता, सभी तुझसे सिद्ध है खेल सारी सिद्धियां, तू सिद्ध का भी सिद्ध है, चाह न कर चिंता न कर, चिंता ही बड़ी दुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, मगर चाह करके दुष्ट है। तू श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, महान से भी महान है, तू अपने आप में मनमया हो जा, तब पता चले। इष्ट मंत्र गुरु को त्याग कर जो इधर उधर भटकते हैं, समझ लो उनके चित्त में श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धाहीन व्यक्ति कहीं भी सफल नहीं हो सकता है। एक कुआं खोदा, फिर देखा कि पानी नहीं निकला, 15 फीट मेहनत की, फिर दूसरा खोदा, तीसरा खोदा, पूरा खेत कुओं से भर दिया, महाराज पानी की बूंद नहीं मिली। पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन मनमाना किया। अगर मनमाना हम काम करते ही आए तो मन पुष्ट होता जाएगा, एक जन्म में तो नहीं, हजार जन्म में भी अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। इसलिए गीताकार ने कहा, विमुढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो अज्ञान तिमिरा अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकय चक्षुर मिलितम येन तस्मै से गुरुवे नमः। जो अज्ञान तिमिर को हटाकर ज्ञान की आंख दे दे, ऐसे गुरुओं को हमारा नमस्कार है, ऐसे गुरुओं की हम खोज कर रहे हैं। तो हमारी बुद्धि जब तक साधनों से अटैचमेंट नहीं करती तब तक हमें बंधन नहीं होता। हम घर से यहां आए, कई गाड़ियां मोटरें मकान व्यक्ति मिले, लेकिन उनकी स्मृति नहीं है। जिनके प्रति राग था उनकी स्मृति है, और जिनके प्रति द्वेष था उनकी स्मृति है। जिस मकान दुकान व्हीकल के प्रति राग था कि रास्ते में वो फलानी व्हीकल देखी, फलानी कार देखी, हम ऐसे लेने वाले। आप अगर कार खरीदते हैं तो जिस प्रकार की कार खरीदते उसी प्रकार की कार अगर रोड से गुजर रही है तो आपका चित्त में रेखा पड़ेगी, और जिस प्रकार की कार आपके पास है या बेचना चाहते हैं तो उस मतलब जिसके प्रति आपका राग होगा या द्वेष होगा वही चीज आपको आपके चित्त में रेखा डालेगी। अगर आपके चित्त में मनमया है, अपने स्वरूप का बोध है, स्वरूप का बोध होने से संसार गंधर्व नगर लगेगा। जब गंधर्व नगर लगेगा तो गंधर्व नगर की कौन सी चीज के प्रति तुम राग करोगे और कौन सी चीज के प्रति द्वेष करोगे। सिनेमा भी एक सिनेमा नगर गंधर्व नगर का भाई तो है, और क्या है। सिनेमा में आपको एक स्त्री दिखी जो भोजन बनाकर तैयार रखती है और कह रही कि ले लो खा लो मेरे भैया, आओ लो मेरे पति देव मेरे भैया, और पति अकड़ा है कि नहीं खाना है, और आपको भूख लगी तो क्या आप कुर्सी छोड़कर खाने जाएंगे कि चल वो नहीं खाते तो मेरे को दे दे बहन जी। सब सिनेमा जगत में बड़ी जोरों की मारामारी हुई, हर एक दूसरे के दांत तोड़ डाले, तो क्या आप उठकर मलम पट्टी करने को जाएंगे अथवा छुड़ाने जाएंगे। अगर छुड़ाने जाते हैं तो आप सिनेमा को सच्चा मान रहे हैं, और डर के भाग जाते कि लड़ रहे भागो भागो भागो। सिनेमा पूरी होने के बाद सिनेमा का जो कुछ तुमने देखा उसके प्रति क्या तुम्हारे राग या द्वेष की बुद्धि रहेगी? नहीं। सिनेमा को सिनेमा समझ लिया तो आपने सिनेमा ठीक से देखा, सिनेमा को सच्चा माना तो पेंट ऐसी लंबी चौड़ी हो जाएगी, नोके ऐसी आवारा कट हो जाएगी, और चाल ढाल ऐसी हो जाएगी, और चित्त में अशांति आ जाएगी। क्योंकि सिनेमा देखने से अशांति आएगी, उसका कारण क्या कि सिनेमा वाले नहीं चाहते कि आपको अशांति आ जाए, लेकिन सिनेमा में जो स्त्री पुरुष दिखाए जाते हैं उनके रहन सहन घूमना फिरना और हवाओं और तूफानों का और बारिशों का मजा लेना जो दिखाया जाता है, हिचके में डोलना और कार चलाना और एक दूसरे के तरफ मुस्कुराना निहारना, वो दिखाया जाता है, एक्टिंग होती, और उनका पफ पाउडर और महाराज श्रृंगार हार श्रृंगार मेकअप जो है वो मेकअप किया हुआ होता है। तो सिनेमा की स्त्री आपकी स्त्री सिनेमा की स्त्री की नहीं तो हो नहीं सकेगी, और आपका घर सिनेमा वालों के घर जैसा तो बनेगा नहीं, और आपका हस्बैंड भी हीरो जैसा होगा नहीं, और आपकी मिसेस भी हीरोइन जैसी होगी नहीं। तो वो देखकर अगर चित्त में राग घुस गया तो अपनी मिसेस होते हुए भी चित्त में खिन्नता रहेगी, अपना मिस्टर होते हुए भी चित्त में खिन्नता, और अपने घर में रहते हुए भी आप अपने घर में नहीं है, किसी काल्पनिक घर में गोते खा रहे हैं। जयराम जी की, इससे अशांति होती। क्योंकि बुद्धि में राग आ जाता है कि ऐसा किसी की मोटर देखकर, किसी की बाड़ी देखकर, किसी की लाड़ी देखकर, किसी का रूप देखकर, किसी का कुछ देखकर बुद्धि अगर अटैचमेंट कर रही है, इच्छा कर रही है, तो आपका सुख खंडित हो जाएगा, आपकी शांति गुम हो जाएगी और बुद्धि निर्णय शक्ति से कुछ नीचे चली आएगी। हकीकत में किसी का रूप, किसी की लाड़ी, किसी की सत्ता देखकर वांछा नहीं करो, लेकिन उसकी सत्ता और उसकी लाड़ी वाड़ी, उसके पास जो कुछ है वो भी 4 दिन का है और ये भी 4 दिन का है, लेकिन वो जिस सत्ता से जी रहा है वो अमर आत्मा तो अभी मेरे पास उतने का उतना है, उसको तो उसका पता नहीं, लेकिन मेरे को सत्संग के द्वारा पता है, तो उसी के रूप में मैं ही तो भोग रहा हूं। हरिओम शिवोहम शिवोहम, ये तुम्हारे ज्ञान का उपयोग है, श्रद्धा का उपयोग है और तत्परता की निशानी है। किसी राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट को देखकर सुकड़ो मत और उसको देखकर ईर्ष्या मत करो, लेकिन अंदर में सोचो कि जवाबदारियां तो वो बेचारा सहन करेगा, सुख तो हम ले सकते हैं कि प्रेसिडेंट होकर हम मजा कर रहे हैं, राष्ट्रपति होकर हम ही ऐश कर रहे हैं या सैर कर रहे हैं, महाराज नेता बने हुए तो हम ही हैं, जनता है तो हम हैं, शाहूकार हैं तो हम हैं, और शाहानी नजर से उनकी शाहानी नजर तुम अपनी नजर मानो, उनका टेंशन अपने सिर पर मत लो, लेकिन उनकी शाहानी नजर उन वो जिस सत्ता से सत्ताधीश हैं वो परम सत्ता मुझ आत्मा परमात्मा की है। सो हम जो राष्ट्रपति जिस की सत्ता से उनकी आंखें देखती है, जिस सत्ता से उनके कान सुनते हैं, जिस सत्ता से वो बोलते हैं, जिस सत्ता से वो वायुयान की यात्रा करते हैं, वो सत्ता चैतन्य आत्मा की है और वही आत्मा मेरा परमात्मा मेरे हृदय में भी उतने का उतना है। राष्ट्रपति को जो सत्ता दे रहा है वो मेरे शरीर को सत्ता दे रहा है और वही वास्तविक में मेरा स्वरूप है, तो ये सब मेरे स्वरूप ही अनेक है। शिवो हम सो हम करके आनंद लीजिए। लेकिन वो बनना और बनना तो फिर महाराज पोस्ट छूटेगा, फिर जब घर जाना तो फिर उतना भी सुकड़ना। मैंने सुना कोई चीफ मिनिस्टर गुजरात के 10-15 साल पहले की बात है, देसाई थे कोई, हितेंद्र देसाई जय जय, वो जब गद्दी छोड़ी और उनकी गाड़ी दिल्ली दरवाजा पुलिस वाले ने रोकी, ट्रैफिक कंट्रोलर होता है साइड देते हैं, 2 दिन पहले तो सायरन बजा के गाड़ी निकली थी, सायरन आओ आ रहा है ट्रैफिक कंट्रोल में, और दिल्ली दरवाजे के लारी वालों ने दूसरों ने देखा कि इतने सही इतने देखने को आए, तो उन्होंने बेचारों ने अखबार से अपना मुंह ढक दिया दे दे। तो बाह्य पद प्रतिष्ठा पाकर जो अपने को सुखी अनुभव करता है तो वो पद प्रतिष्ठा तो एक दिन छूटती थी, 2-5 वर्ष की सत्ता, 10 वर्ष की सत्ता पाकर जो अपने को सुखी मानता है तो उसकी दयनीय स्थिति है, क्योंकि वो सत्ता तुम्हारी नहीं है, सत्ता तो प्रकृति की है, व्यवहार की है, देखने भर की है, तुम्हारी वास्तविक सत्ता तो तुम्हारा केंद्र है, तुम्हारी सत्ता ये बाह्य सत्ता व्यवहारिक सत्ता है, परमार्थिक सत्ता सत्य रहती है, व्यवहारिक सत्ता बदलती रहती है। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये किश्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा, उन यात्रियों की दयनीय स्थिति है जो महाराज चलती नाव में स्थिर रहना चाहते हैं। जय जय, उन यात्रियों की बिल्कुल दयाजनक स्थिति है कि बहते पानी में चलती नाव में स्थिर रहना चाहते हैं। समय की बहती धारा और व्यवहार की चलती नाव और उसको स्थिर करके सुखी रहना चाहते हैं, कितनी दयनीय शोचनीय स्थिति है। तो एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा करेला, कारेलून पाछू लीमड़े चढ़ी है, केवू शू, ऐसे एक तो अज्ञानी और दूसरा श्रद्धाहीन। श्रद्धाहीन व्यक्ति क्या करेगा, मन में जो आएगा ऐसे ही करेगा, और मन में जो मंत्र आया वो जप लिया, तो जिस मंत्र की आप व्याख्या सुनेंगे बढ़िया आज वो जपा, दूसरे महापुरुष के पास दूसरे मंत्र की इष्ट की व्याख्या सुनेंगे वो जपेंगे, जिस देव की इष्ट की आराधना आज कर रहे हैं 15-25 दिन 2 महीने साल में 2 साल में दूसरे इष्ट की महिमा सुनोगे उसको कर उसका जप तब ध्यान करने लगोगे। तो साधन बदलते बदलते महाराज काम नहीं बनेगा, लेकिन आपके जीवन में जो अज्ञान है उस अज्ञान को निवृत्त करने के लिए आत्मज्ञानी महापुरुष जो आपके लिए मार्ग निर्दिष्ट कर दे, उस मार्ग पे आप अगर चल रहे हैं, उनकी सीख को तत्परता से आप व्यवहार में ला रहे हैं, तो आप स्वतंत्र सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो जाएंगे। स्वतंत्र सिंहासन क्या है कि जीवन में काम का प्रसंग आएगा, क्रोध का आएगा, भय का आएगा, लोभ का आएगा, और आप उसके साथ अटैचमेंट नहीं करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, भय, चिंता, दुख ये तब तक प्रभाव रखते हैं जब तक हम उनके साथ जुड़ते हैं। स्लॉटर हाउस की खूनखार तलवारें तब तक प्रभाव रखती है जब तक उसके साथ करंट जुड़ा है। सगड़ी तब तक प्रभाव रखती है जब तक इलेक्ट्रिसिटी के लाइन उससे जुड़ी है। ऐसे ही तुम्हारे चित्त में जो दुख आता है तो दुख के साथ अगर तुम जुड़ो नहीं तो दुख का प्रभाव डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जो सुख की लोलुपता आती है उसके साथ बुद्धि का हस्ताक्षर न करो तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ऊंची साधना है, बड़ी ऊंची समझ है। आज श्री कृष्ण के इस श्लोक से हमें बहुत ऊंची समझ मिल रही है कि मनमाया ईश्वर तत्व को ख्याल करके उसमें टिक जाए, भय राग और क्रोध को छोड़कर, भय राग क्रोध को सम्मति न देकर अपने स्वरूप में सम्मति दें, तो भय राग और क्रोध तेजोहीन हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। जैसे जली रस्सी बांध नहीं सकती और टॉर्च मारकर दिखा हुआ ठूंठे में जो चोर वो डरा नहीं सकता, और रस्सी में दिखने वाला सांप और उसका माई बाप महत्व नहीं रखता, ऐसे ही ब्रह्म में विवर्त रूप से दिखने वाला जगत कोई तुम्हारे लिए महत्व नहीं रखता, न बंधन रखता है, न भय रखता है, न शोक रखता है, क्योंकि आपके पास देखने की ठीक निगाह है। जगत में जो भी दुख है उसका मूल अज्ञान है और उसके बेटा बेटी शंका है, अहंता ममता उसका परिवार है। अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंति जंतवा। अज्ञान से जिनका ज्ञान ढक गया है वे लोग थोड़ी थोड़ी बात पे विमोहित हो जाते हैं, तो वर्तमान में विमोहित हो जाते हैं और भूतकाल में घृणा और दुख से भर जाते हैं और भविष्य की चिंता करके भय से भर जाते हैं। तो वर्तमान, भूत और भविष्य एक ही अंतःकरण में, उस अंतःकरण का अधिष्ठान जो आत्मा है, जो मैं हम बोल रहे हैं, उस मैं को जिसने खोजा उसके बंधन खुल जाते हैं। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मिस्र देश में एक संत हो गए, उनके भक्तों का आग्रह था कि गुरुदेव पधारो। अलेक्जेंडर कोई सिटी कोई जगह होगी, वहां ले गए। वहां वे भक्तों के बीच उत्सव में रहे। उन्होंने जाहिर किया कि कल मैं उन दूर दूर पहाड़ियों पे अज्ञातवास के लिए जा रहा हूं कल से। भक्तों ने देखा कि गुरु महाराज की हाजिरी हमारे लिए बड़ी हिम्मतदायी है, गुरु महाराज की हाजिरी हमारे लिए बड़ी शांतिदायी है, गुरु महाराज की हाजिरी हमारे दुख निवर्तक, सुख और प्रेम को प्रकट करती है, आत्मविश्रांति देती है, और सच्चा जगत में विश्व में आज तक हमारा अगर परम हितेशी हमें जीवन में कोई मिला हो, करोड़ों जन्मों में अगर कोई परम हितेशी व्यक्ति खोजना हो तो सद्गुरु हो सकता है, उससे बड़ा कोई हितेशी नहीं हो सकता। हमारे साधनों के हितेशी तो हमारे मित्र परिवार हो सकते हैं, लेकिन हमारा हितेशी तो सतगुरु ही हो सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं। दूसरा होना चाहे तो हो नहीं सकता। जयराम जी, ध्यान से सुने, हमारा परम हितेशी तो कोई ब्रह्मवेता महापुरुष ही हो सकता है, दूसरा होना चाहे तब भी नहीं हो सकता। दूसरा हमारे शरीर का हितेशी हो सकता है, खान पान की सुविधा कर दे, इज्जत आबरू अहंकार बढ़ाने में जरा सहाय कर दे, ऐसा हितेशी हो सकता है। लेकिन हमें जन्म मरण से छुड़ाकर अपनी गद्दी पर जो बैठा हुआ है वही बैठा सकता है, जो बैठा है वो ब्रह्मवेता है और वही बैठा सकता है, इसलिए वही हमारा परम हितेशी है, उससे अतिरिक्त और पूरा हितेशी कोई हो नहीं सकता। आत्मज्ञानी महापुरुष जैसा विश्व में और हमारा कोई हितेशी था नहीं, है नहीं, होना चाहे तो हो नहीं सकता। विश्व के सब लोग, सब अज्ञानी जिन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, ऐसे सब लोग मिलकर भी हमें सुखी करना चाहे सदा के लिए, तो उनके बस की बात नहीं, वो बेचारे लाचार हो जाएंगे। और हमें ब्रह्मवेता गुरु की प्रसादी पच गई है, तो विश्व के सब लोग मिलकर हमें सदा दुखी करना चाहे तो उनके बस की बात नहीं, क्योंकि हस्ताक्षर हम करेंगे तभी दुखी होंगे। देखो कितनी स्वतंत्रता है, कितनी आखिरी बात। तो ऐसे गुरु को उन्होंने कहा कि बाबा जी आप हमारे बीच ही रहिए, आपके रहन सहन खान पीन आने जाने गाड़ी मोटर की सब सुविधाएं हम और बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन आप पहाड़ियों में अज्ञातवास मत जाइए। उन्होंने कहा कि भाई और तुम्हारा तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया अलग है, हम कभी कभी तुम्हारी दुनिया में आते हैं, नीचे उतरते हैं, साधनों को मैं मानकर उसका उपयोग करके दिखा देते हैं, लेकिन हम सिद्ध वस्तु में अपने प्रियतम में मस्त रहने के लिए एकांतवास हो लघु भोजन आदो मौनम निराशा करणावरो, चित्त के प्रसाद को पाने के लिए एकांत, और हम उस प्रियतम में तृप्त रहेंगे एकांत में, अब बखेड़े में ज्यादा नहीं रहते। गिरधर कविराज हो गए, वेदांतिक जगत में बहुत लोगों ने जानते हैं। गिरधर कविराज जी ने कहा थोड़े दिन के वास्ते कौन उपाधि करे, किस जीवन के वास्ते जग में पची पची मरे, जो राग में द्वेष में भय में क्रोध में पच रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर साधक भी या संत भी अधिक समय बने रहेंगे तो उनका थोड़ा बहुत उष्णता लगती है, जब उष्णता लगती है तो स्वरूप में निष्ठा है तो हटा देंगे, नहीं तो एकांत में जाकर और गोता मारेंगे, और निष्ठा होते हुए भी एकांत में जैसा मजा है, ब्रह्मवेताओं को एकांत पहाड़ियां नदी तालाब का किनारा एकांत जंगल झाड़ी या जिज्ञासुओं के बीच उनको जितना आनंद आता है उतना संसार के बड़े बड़े रहस्यों और आडंबर से जीने वाले व्यक्तियों के बीच नहीं आता, वो संत चले गए एकांत में। मेरे गुरुदेव भी साल में 2-2.5 महीना नैनीताल के जंगलों में एकांत में निवास करते। तो ये बात उसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी कृपानाथ आपने जो सुना है उसको मनन नित ध्यासन करने के लिए कभी मौन कभी एकांत कभी पवित्र जगह का अवलंबन लेकर अपनी निष्ठा बनाई। रुपया बनाया आपने, शरीर बनाया, मकान बनाया, घर बनाया, लेकिन ये सब बहुत तुच्छ चीजें हैं, छोटी चीजें, ये बनाने के लिए आपका अवतार नहीं हुआ है, आपका जन्म ये तुच्छ खिलौने बनाने के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म हुआ है अपनी वृत्ति बनाने के लिए, और वृत्ति ऐसी बनाओ कि वृत्तियों से निवृत्ति हो जाए। जय राम जी। कर्म ऐसा करो कि कर्तृत्व का लोप हो जाए, भोग ऐसा भोगो साक्षी भाव से कि भोक्ता का लोप हो जाए, महाराज समझ ऐसी लाओ कि समझ और समझाने वाला दोनों अपना स्वरूप दिख जाए।